بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی آیت کرمانک 54, 55 اور 56 کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں محمد صدیق منشاوی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دھرم سے پھرے گا वो जान ले कि इससे ईश्वर को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में ईश्वर ऐसे लोगों को लाएगा जिन्हें वो पसंद करता होगा, और वे भी ईश्वर को पसंद करते होंगे। वे ईमान वालों के समक्ष नर्म और काफिरों के समक्ष कड़े होंगे। वे ईश्वर के मार्ग में जिहाद और संघर्ष करेंगे तथा किसी धिक्कार करने वाले की धिक्कार से नहीं डरेंगे। ये ईश्वर की कृपा है जिसे वो जिसको चाहता है प्रदान करता है, और ईश्वर अत्यंत व्यापक ज्ञान वाला और जानकार है। हे ईमान वालों, तुम्हारा अभिभावक तथा स्वामी केवल ईश्वर, उसका पैगंबर और वे ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं और रुकू की स्थिति में ज़कात देते हैं। और जो कोई ईश्वर, उसके पैगंबर तथा ऐसे ईमान वालों की अभिभावकता और स्वामित्व को स्वीकार करे, तो जान लो कि निसंदेह ईश्वर का गुठी प्रभुत्व प्राप्त करने वाला है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज सोमवार है, बेहमन की 4, जमादिसानी की 21 और जनवरी की 24 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे विश्व दर्पण, और अंतिम कार्यक्रम होगा जल संकट। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए, पता है parstoday.com/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम महरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि तेहरान अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों में विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे का कहना है कि वियना में जारी परमाणु वार्ता में प्रगति हुई है। एक्टिविस्ट सरजिल इमाम के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। यमन ने हमलावर देशों सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात पर जवाबी मिसाइल हमले किए हैं। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के राष्ट्रपति ने टोगो के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में अफ्रीकी देशों के साथ तेहरान के संबंधों को मजबूत बनाने और सहयोग में विस्तार करने पर बल दिया है। सोमवार को तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने टोगो के विदेश मंत्री रॉबर्ट दोसी से मुलाकात की। इस मुलाकात में राष्ट्रपति रईसी ने कहा, तेहरान अफ्रीकी देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है, और ईरान और टोगो संयुक्त हितों की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास कर रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने अफ्रीका में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों का विशेष तौर पर उल्लेख करते हुए कहा कि इन संसाधनों को अफ्रीका के विकास और प्रगति के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इब्राहिम रईसी का कहना था कि एक लंबे समय तक पश्चिमी ताकतों ने अफ्रीकी जनता का शोषण किया और उनके आर्थिक स्रोतों को लूटा है। आज भी विभिन्न रूपों में इस महाद्वीप में लूटमार जारी है। स्वाधीनता हासिल करने के लिए अफ्रीकी जनता के संघर्षों का हमें सम्मान करना चाहिए। टोगो के विदेश मंत्री ने इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग में विस्तार की जरूरत पर बल देते हुए कहा, हमें संबंधों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में तेहरान पर पूरा भरोसा है और आशा है कि आर्थिक सहयोग में परस्पर साझेदारी के मार्ग पर आगे बढ़ा जाएगा।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे का कहना है कि वियना में जारी परमाणु वार्ता में प्रगति हुई है। सोमवार को खतीब जादे ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि वार्ता में शामिल पक्षों ने इस बात की जोरदार वकालत की है कि परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी की स्थिति में कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए जिसके बाद वो फिर से इससे बाहर नहीं निकल सके। उन्होंने कहा कि इस वार्ता में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि ईरान द्वारा गारंटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और सभी पक्ष गारंटी के मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री का कहना था कि ईरान वियना वार्ता में एक मजबूत और स्थायी समझौते के मकसद से शामिल हुआ है और इसके लिए गारंटी का निर्धारण करना जरूरी है। ईरान के मामलों में अमेरिका के प्रतिनिधि रॉबर्ट माली के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान ने वार्ता के पहले ही दिन से किसी भी पूर्व शर्त को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अमरीका और ईरान के बीच कैदियों के तबादले के बारे में उन्होंने कहा कि अमरीकी जेलों में बंद कैदियों का मुद्दा शुरू से ही तेहरान के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। अगर वॉशिंगटन अपने वादों पर अमल करता है तो इस मुद्दे को बहुत ही कम समय में सुलझा लिया जाता।
एक्टिविस्ट शर्जील इमाम के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को शर्जील इमाम के खिलाफ राजद्रोह समेत आईपीसी की अन्य कई धाराओं में आरोप तय कर दिए। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने राजद्रोह, धर्म के आधार पर समूहों में वैमनस्यता फैलाना, देश की अखंडता के खिलाफ बयान देना, शरारत भरे बयान देने के अलावा गैर कानूनी गतिविधियों के तहत आरोप तय किए हैं। मोदी सरकार द्वारा लाए गए विवादित नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राजधानी दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शनों के दौरान शर्जील द्वारा दिए गए भाषणों से ये मामला जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने 2020 में शर्जील इमाम के खिलाफ FIR दर्ज की थी। बाद में उसमें UAPA की धाराएं भी जोड़ी गईं। 13 दिसंबर 2019 को दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शर्जील इमाम ने भाषण दिया था। इसके बाद 16 जनवरी 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी भाषण दिया गया। शर्जील इमाम जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं। जामिया में 13-14 दिसंबर 2019 को हुई हिंसा को लेकर जामिया नगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने 25 जुलाई 2020 को मामले में चार्जशीट दायर की थी।
भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के कोरोबा जिले में भारत को कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाने और सिर्फ हिंदुओं के साथ ही संबंध रखने संबंधी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कोरबा जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस ने प्रमोद अग्रवाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज किया है। पटेल ने बताया कि जिले में सोशल मीडिया में एक वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि इस वीडियो में प्रमोद अग्रवाल की पहचान हुई है जबकि अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। उन्होंने बताया कि वीडियो की जांच की गई तब पाया गया कि वीडियो की भाषा सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली है, जिसके बाद पुलिस ने अग्रवाल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वीडियो में कुछ लोग अग्नि को साक्षी मानकर कथित तौर पर ये संकल्प लेते दिख रहे हैं कि बंकी मोगरा के निवासी भारत को कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अपने घरों और प्रतिष्ठानों में केवल हिंदू धर्म के लोगों को नौकरी पर रखेंगे और हिंदू धर्म के लोगों के साथ संबंध रखेंगे। वीडियो के अंत में वहां मौजूद लोग जय श्री राम और राम राज की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी का कथित तौर पर नारा लगाते दिख रहे हैं।
भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधानसभा चुनाव होगा और केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति सामान्य होने पर इसका राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि जहां तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल है, परिसीमन प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसके पूरा होने के बाद हम विधानसभा चुनाव कराएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने संसद में आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। स्थिति सामान्य होने के बाद इसका राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। शाह ने कहा कि कुछ लोग घाटी के लोगों के मन में भ्रम पैदा करना चाहते हैं और वो सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि वे उनके झांसे में ना आएं। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास लोकतंत्र से ही हो सकता है और लोग खुश रह सकते हैं तथा युवाओं को भी लोकतंत्र में रोजगार मिल सकता है।
कश्मीरी पत्रकार पर PSA लगाते हुए पुलिस ने कहा, सरकार के हित में कम रिपोर्ट करते थे। भारत नियंत्रित कश्मीर के पत्रकार को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उन पर PSA लगा दिया गया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार किए गए पत्रकार सज्जाद गुल को अदालत से जमानत मिलने के अगले ही दिन उनके खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। 29 वर्षीय सज्जाद गुल को पिछले 5 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। वो श्रीनगर में एक समाचार पोर्टल द कश्मीर वाला के लिए काम करते हैं और साथ ही कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में पत्रकारिता में मास्टर के छात्र भी हैं। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए लश्कर ए तैयबा के एक छापामार के परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था। इस वीडियो में मारे गए छापामार के परिवार वाले कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। बांदीपुरा उपायुक्त ओवैस अहमद के हस्ताक्षर वाले PSA संबंधी आरोप पत्र में सज्जाद को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि आपने हमेशा सोशल मीडिया पर विवादित बयान दिए या ट्वीट किए हैं। एक पत्रकार होने के नाते आप केंद्र शासित प्रदेश की भलाई के बारे में रिपोर्टिंग कम जबकि द्वेष को बढ़ावा देने वाले काम ज्यादा करते हैं।
एक हफ्ते से भी कम समय में यमन ने हमलावर देशों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर जवाबी मिसाइल हमले किए हैं। अमीराती न्यूज एजेंसी WAM की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को UAE के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके दावा किया कि यमनी बलों द्वारा फायर किए गए 2 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि निशाना बनाए गए मिसाइलों का मलबा राजधानी अबूधाबी के कई इलाकों में आकर गिरा। यमन का लाहौसी आंदोलन का कहना है कि उसने अबूधाबी स्थित दफरा एयरबेस और दुबई के कई महत्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्रों को सटीक रूप से निशाना बनाया है। यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा है कि हम जवाबी कार्रवाई के अगले चरण में अपने हमलों का दायरा बढ़ाएंगे ताकि हमलावर देशों को उनके हमलों का सही जवाब दिया जा सके। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं जिसमें अबूधाबी के आसमान में मिसाइलों की घन गरज को सुना और देखा जा सकता है। यमनी टीवी चैनल अल मसीरा ने सोमवार की सुबह किए गए जवाबी हमलों को यमनी सेना और अल हौसी आंदोलन द्वारा सऊदी अरब और UAE के काफी भीतर किया गया सैन्य ऑपरेशन करार दिया। इराक के साबिरी न्यूज चैनल ने UAE के राजधानी अबूधाबी पर दागे गए मिसाइलों की वीडियो फुटेज जारी की है।
इराक में आतंकवादी अमरीकी सैनिकों के कारवां के रास्ते में धमाका हुआ है। सवेरियन न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बाबिल प्रांत में आतंकवादी अमरीकी सैनिकों के कारवा के रास्ते में धमाका हुआ जिसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी ग्रुप ने स्वीकार नहीं की है और अभी तक इस धमाके से होने वाले संभावित जानी और माली नुकसान का भी ब्यौरा सामने नहीं आया है। रविवार को भी दीवानिया प्रांत में आतंकवादी अमरीकी सैनिकों के कारवा के रास्ते में 2 बार धमाके हुए थे। हालिया कुछ महीनों के दौरान अमेरिका की सशस्त्र सेना के कारवां पर इस प्रकार के हमले होते रहे हैं। इराक के प्रतिरोधकर्ता गुटों का कहना है कि जब तक आतंकवादी अमेरिकी सैनिक देश से निकल नहीं जाते तब तक हमलों का क्रम जारी रहेगा।
इसराइल की जेलों में कैद 110 फिलिस्तीनी कैदी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इरना की रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीन के बंदियों के मामलों की कमेटी के प्रमुख का कहना है कि लगभग 100 फिलिस्तीनी ऑफर जेल में और 10 फिलिस्तीनी एशल बेर सबा जेल में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं जिनमें फिलिस्तीनी नेता नायल बरगोसी भी शामिल हैं। फिलिस्तीनी कैदियों के मामलों की कमेटी के प्रमुख अब्दुल नासिर फरवाना का कहना था कि इसराइल की जेल में कैद दर्जनों फिलिस्तीनी कैदी दिल की बीमारियों कैंसर किडनी की बीमारी जैसी खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। राजनीतिक चर्चा। श्रोताओ, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आज हम बात करेंगे अरब संघ की वर्तमान दुर्दशा की। यूरोपीय देश अफगानिस्तान के संबंध में अपना बयान और स्वर बदल रहे हैं। इस विषय पर एक रिपोर्ट हम आपको सुनाएंगे। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में चुनावी बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दलों की गतिविधियां चरम पर पहुंच चुकी हैं।
चिंताजनक और शर्मनाक।
इस संदर्भ में भी एक रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे। चर्चा के विषय यही हैं। आरंभ करते हैं अरब संघ से। अरब देशों के संगठन अरब संघ का गठन एक खास मकसद और उद्देश्य से किया गया, लेकिन आज ये संगठन अपने उद्देश्य से काफी दूर दिखाई देता है। जायजा पेश कर रहे हैं अख्तर अब्बास।
अरब संघ अपने गठन के मकसद से पूरी तरह से हटता दिखाई दे रहा है। जब अरब देशों ने मिलकर अरब संघ का गठन किया था तो उसका मुख्य लक्ष्य और दायित्व अरब देशों के सामने मौजूद संकटों और समस्याओं को हल करना था, लेकिन आज कुछ और ही नजारा नजर आ रहा है। अरब देशों की वर्तमान स्थिति, विशेषकर 2011 में पैदा होने वाली स्थिति को देखने के बाद कुछ लोगों को अरब संघ की याद आई, लेकिन अरब संघ ने संकटों के समाधान में कुछ भी नहीं किया और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि इसका गठन बेकार और लाभहीन रहा है। इराक, सीरिया, फिलिस्तीन, लेबनान, सूडान, लीबिया, अल्जीरिया और मोरक्को जैसे देशों में पैदा होने वाली स्थिति इस बात की गवाह है कि ये संघ अपने गठन की मुख्य जिम्मेदारी से काफी दूर हो चुका है और सऊदी अरब के हाथों का खिलौना बना हुआ है। 7 साल से यमन पर सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब गठबंधन के भीषण हमले हो रहे हैं और इन वर्षों के दौरान अरब संघ ने न केवल इस संकट के समाधान के लिए कोई प्रयास किए, बल्कि वो यमन पर हमला करने वाले देशों की नीतियों को बढ़ाने वाला ही साबित हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में रविवार को संयुक्त अरब इमारात की अपील पर अरब संघ ने आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें संघ के स्थायी सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक का मकसद यमनी सेना और स्वयं सेवी बलों की यूएई पर जवाबी कार्रवाई की निंदा करना था। बताया जाता है कि संघ की अगली बैठक विदेश मंत्री स्तर पर होगी, जिसमें यमन की राष्ट्रीय साल्वेशन सरकार के विरुद्ध फैसला लिए जाने की उम्मीद है और ये उम्मीद है कि अमेरिका और अरब देशों से अपील की जाए कि वो यमन के जन आंदोलन अंसारुल्ला को ब्लैक लिस्ट करें। यमन की नेशनल साल्वेशन सरकार के विदेश मंत्रालय ने अरब संघ की बैठक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 40 साल पहले ही राष्ट्रों के जमीर में ये संघ मर चुका है और आज भी ये बुरी तरह अलग थलग पड़ चुका है।
ऐसा लगता है कि यूरोपीय देश अफगानिस्तान और वहां की तालिबान सरकार के संबंध में अपना स्वर बदल रहे हैं। काबुल से बेहनामी यजदानी की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कायम रिजवी।
अफगानिस्तान पर तालिबान के 5 महीनों के नियंत्रण के बाद वे यूरोपीय देश जिन्होंने अमेरिका के साथ अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया था, अब तालिबान के साथ नए ढंग से संपर्क साधने में लग गए हैं। हालिया दिनों में काबुल में यूरोपीय संघ का कार्यालय सक्रिय हो चुका है। नॉर्वे ने तालिबान को ओस्लो बुलाने के लिए विशेष विमान काबुल भेजा है ताकि उनके साथ बैठकर कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाए। नॉर्वे में वहां के अधिकारियों के साथ हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हालांकि नॉर्वे की सरकार का कहना है कि तालिबान के 3 दिवसीय आवास के दौरान उनके साथ महिलाओं के अधिकारों और अफगानिस्तान की जनता की सहायता के मुद्दे पर ही चर्चा की जाएगी। अमेरिका और यूरोपीय देश अफगानी जनता की सहायता के बारे में इस स्थिति में बात कर रहे हैं कि जब पिछले 20 वर्षों के अतिक्रमण के दौरान उन्होंने अफगानिस्तान की जनता को इस कठिन स्थिति में पहुंचा दिया है। विदेशी आर्थिक सहायता का लाभ अधिकतर सत्ताधारी गुटों ने खूब जमकर उठाया, जबकि अफगानिस्तान के अधिकांश लोग जो बुरे हालात में जिंदगी गुजार रहे थे उनकी स्थिति दिन ब दिन बुरी होती गई और अब ये स्थिति हो गई है कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। महिलाओं के अधिकारों के बारे में यूरोपीय देश जो कुछ तालिबान से कहना चाहते हैं और जो कुछ अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत है उसके अंदर बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। अमेरिका और यूरोप की कुछ कठपुतलियों को हम अपने देश में अर्थात अफगानिस्तान में कहीं पर भी जगह नहीं देंगे और उनका हमेशा विरोध करते रहेंगे। पिछले कुछ महीनों के दौरान अमेरिका और उसके घटकों ने अफगानिस्तान की जनता पर प्रतिबंध लगाए और अरबों डॉलर की उनकी संपत्ति सीज कर दी। वे देश जो अफगानिस्तान में सहायता के नाम पर आए थे उनकी नीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। अगर उनकी नीयत सही होती तो इस वक्त अफगानियों का जो हाल है वो नहीं होता। बहुत से यूरोपीय देशों पर यह आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के साथ आतंकवाद और तालिबान से मुकाबले के नाम पर पिछले दो दशकों के दौरान अफगानियों का जनसंहार किया है। अफगानिस्तान में अपनी नीतियों को लागू करने के लिए उन्होंने तालिबान की सरकार को मान्यता न देने का एक ड्रामा खेला है। तालिबान की ओर से बार बार मांग किए जाने के बावजूद अब तक किसी भी सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी है। इन 5 महीनों के दौरान तालिबान को मान्यता देने के बारे में हर देश ने कोई न कोई शर्त जरूर लगाई है। काबुल से IRIB के लिए बहनाम यजदानी की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में चुनावी बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दल एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और 10 फरवरी को पहले चरण के लिए मतदान संपन्न होगा। इससे पहले तमाम राजनीतिक दल विभिन्न माध्यमों से जनता तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह ऐसी स्थिति में है कि कोविड के इस दौर में चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सभी राजनीतिक दल संवाददाता सम्मेलनों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं और अपने वादे जनता तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समाचार पत्र से साक्षात्कार में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि सपा कई वादे कर रही है ये जानते हुए भी कि वह जीत नहीं पाएगी।
कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
भाजपा इस चुनाव में भी हिंदुत्व का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रही है। योगी ने कहा कि पहले गाजियाबाद में केवल हज हाउस बनता था लेकिन हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर भवन बनवाया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया द्वारा कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव व जान माल, मजहब की असुरक्षा अर्थात यूपी की बदतर कानून व्यवस्था सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों और युवाओं से वादा किया है कि सपा की सरकार बनने पर सभी फसलों पर MSP निर्धारित की जाएगी। वहीं IT सेक्टर में 22 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार किया और कहा कि एक ओर जहां पूरा देश उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने एक साक्षात्कार में कहा कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन्ना से जो प्रेम करे वे पाकिस्तान से प्रेम का कैसे इनकार करे।
चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार।
उत्तर प्रदेश के 7 चरणों के विधानसभा चुनावों के लिए जहां सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं और नेताओं के दल बदलने का क्रम भी जारी है, वहीं राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विश्व दर्पण, जिसके बाद आप सुनेंगे सभा का अंतिम कार्यक्रम जल संकट। विश्व दर्पण।
दोस्तों, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम यमन पर हमले और पश्चिम के दोहरे रवैये के विषय पर चर्चा करेंगे। अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। यमन के आवासीय क्षेत्रों पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात के संयुक्त हमलों में दर्जनों आम नागरिक मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी गठबंधन के युद्धक विमानों ने राजधानी सना के आवासीय क्षेत्रों को पार्श्विक बमबारी का निशाना बनाया, जिसके दौरान 20 आम नागरिक हताहत और 6 अन्य घायल हो गए। हताहत और घायल होने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले यमनी सेना ने हमलावर सऊदी और इमाराती गठबंधन के पार्श्विक हमलों के जवाब में सोमवार को अबूधाबी और दुबई के हवाई अड्डों और कुछ तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए थे। संयुक्त अरब इमारात के खिलाफ यमनी सेना के तूफान यमन नामक ऑपरेशन पर बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। प्रतिरोधकर्ता गुटों ने संयुक्त अरब इमारात की शैतानियों और यमन के मामले सहित क्षेत्र के मामलों में उसके हस्तक्षेप की निंदा करते हुए इस कार्रवाई को यमनियों की विजय करार दिया है। नौजवा आंदोलन की राजनीतिक परिषद के प्रमुख शेख अली अल असदी ने ट्वीट किया कि संयुक्त अरब इमारात के मुकाबले में मिलने वाली कामयाबियों पर जो क्षेत्र में साम्राज्यवादियों का पिट्ठू और शैतानों का छेला है, हम यमन की राष्ट्रीय सरकार में अपने स्वतंत्रता प्रेमी भाइयों को बधाई देते हैं। जी हां, सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात अरब देश के ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से खरीदते हैं, और अब तो यूएई खुलकर इसराइल की गोद में भी जा बैठा है। सारे हथियारों और डिफेंस सिस्टम के बावजूद ये कैसे संभव हुआ कि यमनी सेना के 20 ड्रोन विमानों ने अंदर घुसकर अबूधाबी के महत्वपूर्ण और रणनीतिक इलाकों को निशाना बनाया, जबकि 10 बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर हुए। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, इसराइल और ब्रिटेन इन ड्रोन विमानों और मिसाइलों को क्यों नाकाम न बना सके? विचार सुनिए पाकिस्तान के प्रसिद्ध टीकाकार मुबशिर मीर के।
एक चीज तो बड़ी वाजे है कि देखें, जो भी नेशन जो है, कोई भी कौम जो है, वो जब इस तरह की चैलेंजेस का शिकार होती है तो जाहिर है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए आखिरी इंतहा तक जाने की कोशिश करती है। और एक वक्त होता है जब स्टार्ट होता है ऐसी किसी इंसर्जेंसी का, तो उस वक्त सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट होती है। سات سال اس طرح کی انسرجنسی کا بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے جس میں قومیں جو اس طرح کی خاص طور پر جیسے فرمایا جا رہا ہے کہ 1200 قبائل جو ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں تو ایک قبائلی جو نظام ہوتا ہے اس میں سروائیول کے لیے جو سٹرگل ہوتی ہے وہ زیادہ شدید قسم کی جاتی ہے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو یمن کی ایک اسٹریٹجک سچویشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کے ساتھ سمندر لگتا ہے, معاشرہ کے صورت میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مشکل یہ امر ہو سکتا ہے, لیکن جس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ایک اپنی سروائیول کی وار ہوتی ہے نا اس کے لیے راستے نکالنا کوئی مشکل صورتحال نہیں ہوتی, پھر جب ول ہوتی ہے تو راستے خود بخود نکلتے ہیں. تو ان کے پاس ایک ول تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ ہم نے ہمارے اوپر جو انسرجنسی ہے اس کے ہم نے نبٹنا ہے, تو پھر انہوں نے وہ راستے بھی تلاش کیے. یقیناً وہ کوئی سیدھے راستے نہیں ہو سکتے جو کہ بالکل براہ راست کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے تو کوئی چیزیں حاصل نہیں کی گئی ہوں گی. بہرحال یہ ایک جو ہے وہ ان کی ایفرٹ ہے, اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں, اس انداز سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو کیپیبلٹی حاصل کی ہے اس کا انہوں نے اوپنلی اظہار کر دیا ہے, اور یہ ایک وارننگ دے دی ہے اپنے رائیولز کے لیے کہ اگر وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھتا ہے تو ہم اس کا جواب اسی طرح دینے کی پوزیشن میں ہیں.
اسی مدھے سعودی عرب کی اور سے سب سے کڑی پرتکریا سامنے آئی. سعودی عرب کے ودیش منترالے نے یمن کے خلاف حملوں کی اندیکھی کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ الحوثی چھاپہ مار دنیا اور شیتر کی شانتی استھرتا اور سرکشا کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. شیتر کی غیر عرب سرکاروں میں ترکی بھی ہے جس نے یمنیوں کے حملوں کی نندا کی ہے. ترکی کے ودیش منتری چاوش اوغلو نے ابوظہبی کے خلاف یمن کی کارروائی کو آتنکوادی قرار دیا. یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ سعودی گٹھ بندھن نے یمن کا چاروں اور سے گھیراؤ کر رکھا ہے, اور سنیکت عرب امارات کے سمندری جہاز پر حال ہی میں قبضہ کر کے یمنی سینا نے یہ سندیش دے دیا تھا کہ آنے والے دن مہتوپورن ہوں گے, اور اس کے بعد لگاتار چیتاونیوں کے بعد آخرکار یمنیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ابوظہبی اور دبئی پر یمنی میزائل اور ڈرون ویمان گرجے. تہران میں رہنے والے پرسدھ ٹیکہ کار گلشن عباس نقوی یمنی سینا کی بڑھتی شکتی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں,
جب بھی کوئی ملت جو ہے قوم جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے اور دوسروں پر انحصار ختم کر دیتی ہے, اس پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کی سب سے پہلی نظر جو ہے وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانا اس پر وہ مرکوز کر دیتی ہے. یہی صورتحال ہم نے ایران میں دیکھی. ایران میں بھی 42 برسوں سے امریکہ اور دوسرے ملکوں نے پابندیاں عائد کر رکھی تھیں اور ہر طرح کی پابندیاں عائد تھیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی ایران نے بہت ترقی کی, ہر میدان میں ترقی کی, اور یہی ماڈل جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں یمن میں بھی اسی کو دیکھ رہے ہیں. یمن والے جو ہیں ان کا تقریباً 6 برسوں کے سے مکمل محاصرہ کیا گیا ہے, ہر طرح کا محاصرہ کیا جا رہا تھا کہ ابھی اس کے لیٹسٹ جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ جیسے یمن والوں نے ان کا ایک بحری جہاز پکڑا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے ایک بحری جہاز جو یمن کی طرف آ رہا تھا اور اس میں تیل تھا اس کو سعودی عرب والوں نے پکڑ لیا. تو یہ صورتحال ہے اب تک, پتہ نہیں کتنے یعنی متعدد اس طرح کے بحری جہاز جو ہیں جو انسان دوستانہ امداد لے کر یمن کی سمت بڑھ رہے تھے اور وہاں کے لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں, اب جیسے تیل وہاں پر جا رہا ہے تو تیل ظاہر ہے کارخانوں میں فیکٹریوں میں استعمال ہوگا, تو ادویات بنیں گی, دوسری چیزیں جو ہیں وہ یمنی عوام کی جو بنیادی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ یمنی مجاہدین کا مقابلہ کرنے کے بجائے عوام پر ظلم ڈھاتا ہے, عوام پر مظالم ڈھاتا ہے.
امریکہ اور کچھ یورپی سرکاروں کی اور سے بھی اس حملے پر پرتکریا سامنے آئی ہے۔ امریکی ودیش منترالے کے پروکتا نیٹ پرائس نے ابوظہبی پر یمنی سینا کے حملوں کی نندا کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں ابوظہبی کے ایئرپورٹ سہت سارجنک استھانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن کی جنگ کو 7 سال کا سمے ہو گیا ہے، جبکہ یہ جنگ اس دعوے کے ساتھ شروع کی گئی تھی کہ 1 سپتاہ کے اندر یمن پر قبضہ ہو جائے گا اور جنگ بند ہو جائے گی اور ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن 7 سال سے یمنی جنتا سنگھرش کر رہی ہے اور وہ میدان میں ہے۔ اس سمے شکتی کا سنتولن کس طرف نظر آ رہا ہے؟ وچار سنیے بھارت کے پرسدھ ٹیکہ کار اور یوٹیوبر محمد احمد کاظمی کے۔
دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی سماج یا کوئی بھی ملک جب اس کے ملک پر کوئی قبضہ کرے یا حملہ کرے، اس کے لیے زندگی، اور جو کوئی ڈاکو ہوتا ہے، حملہور ہوتا ہے، وہ اپنے گھر سے دوسرے گھر میں پہنچتا ہے اپنے مسموم ارادوں کے ساتھ۔ یہ قوم اپنے ملک کے بچانے کے لیے، دفاع کے لیے مضبوطی سے کھڑی ہوئی، اور اتنی مضبوطی سے کھڑی ہوئی جس کی امید دنیا کے ملکوں کو نہیں تھی، خاص طور پر ان ملکوں کو جنہیں اپنے طاقت پر بہت فخر تھا، زوم تھا۔ تو یہ اب ایسی حالت میں ہے کہ اب سعودی عرب مجبوراً بات چیت کا راستہ نکال رہا ہے، ایران سے بات کر رہا ہے بغداد میں جا کر کے، تاکہ کسی طرح سے وہ یمن جنگ کو ختم کرانے میں مدد کر دے۔ لیکن اس کے یہاں شیطنت یہ ہے کہ وہ ایک طرف ایران سے تعلقات بہتر کر کے یمن جنگ سے جان چھوڑانا بھی چاہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسرائیل سے تعلقات کے لیے اپنے عرب ساتھی ملکوں کو باقاعدہ آگے ان کی تشویق کر رہا ہے، انکریج کر رہا ہے، اور خود بھی سیکرٹ، جس کو اب سیکرٹ بھی کہتے ہوئے ضروری نہیں لگتا، خفیہ نہیں بلکہ کھل کر کے اسرائیل کے ساتھ تعاون بڑھا رہا ہے، اپنے ڈیفنس تعلقات بڑھا رہا ہے۔ تو یہ دو ناؤ میں ایک ساتھ پیر رکھ کر کے وہ چل رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو سوال آپ نے کیا وہ یہ کہ طاقت کا توازن کس طرف ہے، تو طاقت اب حوثیوں کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہتے ہیں ریاض میں، ریاض کے ایئرپورٹ پر یا دوسری تنصیبات پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اب وہ جدہ تک پہنچ چکے ہیں، مختلف جگہوں میں جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں حملہ کرنے کی حالت میں ہیں۔ اور سعودی عرب کے جو محافظ تھے، امریکہ نے اپنے میزائل ڈیفینس سسٹم وہاں پر رکھے ہوئے تھے، حالانکہ جب تک وہاں تھے تب تک نہیں بچا سکے، اب انہوں نے بھی اپنا وہ میزائل ڈیفینس سسٹم واپس لے لیا ہے۔ طاقت کا توازن بہرحال بہت بار یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اب یمن کے حوثیوں کے ہاتھ میں ہے۔ جنگ ختم کب ہوگی اس کا فیصلہ سنا میں بیٹھی ہوئی حکومت کرے گی، ریاض والوں کے اب بس کی بات نہیں ہے، وہ تو اب اپنی جان بچانے کے لیے مختلف ملکوں کی راجدھانیوں میں ایک طرح سے دھکے کھا رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ جنگ بند کریں، لیکن پھر بھی اپنی انا کو سامنے رکھے ہوئے ہیں اور اس انا کی وجہ سے ہی اپنا نقصان اور زیادہ بڑھا رہے ہیں۔
امریکہ نے غیر سینے پرتشٹھانوں پر حملے کا دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ جب پچھلے 7 سال کے دوران سعودی عرب اور سنیکت عرب امارات کے حملوں میں سب سے زیادہ نقصان عام یمنی ناغرکوں کو اٹھانا پڑا ہے۔ بہرحال یمن کے عام ناغرکوں پر سعودی عرب کے گٹھ بندھن کے تازہ حملوں پر، جس میں درجنوں عام ناغرک مارے گئے اور گھائل ہوئے، امریکہ اور یورپ کی اور سے کسی بھی طرح کی کوئی پرتکریا سامنے نہیں آئی۔ پشچمی دیشوں کے اس دوغلے رویے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مانو ادھیکار کی دعوے دار بڑی شکتیاں اس معاملے پر سلیکٹو مائنڈ رکھتی ہیں، اور جب تک ان کے ہتوں کو خطرہ نہ ہو انہیں انسانیت کا روندے جانا دکھائی نہیں دیتا۔ سنیکت عرب امارات کے ورودھ یمنی سینا کی کاروائی آتم رکشا کے جائز حق کے انترگت انجام پائی ہے، جس کا سنیکت راشٹر سنگھ کے گھوشنا پتر کے انوچھید 15 میں اسپشٹ روپ سے ورنن کیا گیا ہے۔ تو دوستوں، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔
جل سنکٹ۔
दोस्तों, कार्यक्रम जल संकट की 45वीं कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार करें।
दोस्तों, जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता ने मनुष्य को इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए रचनात्मक होने पर प्रेरित किया है। प्राचीन काल के मनुष्य ने अपने आराम के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर किया ताकि वो एक आरामदायक जीवन गुजार सकें। प्राचीन काल से मानव अपने मार्ग की उन बाधाओं को दूर करता आ रहा है जो उसके दैनिक जीवन में रुकावट बनती हैं। नदियों से निकलने वाले पानी को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से चट्टानों और पर्वतों के बीच से जल संरचनाओं का निर्माण तथा मनोरंजन के लिए हरित स्थलों की स्थापना पुराने जमाने के लोगों के अथक प्रयासों और उनकी होशियारी का प्रमाण है।
बांध के निर्माण को बांध निर्माण इंजीनियरिंग का हिस्सा माना जाता है। इसमें क्षेत्रों की विशेष भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखा जाता है। ईरान में प्राचीन काल से पानी की कमी, विशेष भौगोलिक परिस्थितियों और पानी की दैनिक आवश्यकता के कारण जल को विशेष महत्व प्राप्त रहा है। यह बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ईरान में बांध निर्माण और पुल निर्माण की कला कब से आरंभ हुई। वर्तमान समय में ईरान के कुछ क्षेत्रों में प्राचीन काल के कुछ ऐसे बांधों के खंडहर मिले हैं जो 3000 वर्षों से भी अधिक पुराने बताए जाते हैं।
जल संरचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता उचित स्थान का चयन और उसका निर्माण है जो प्राचीन काल के लोगों के वास्तुकला के ज्ञान को दर्शाता है। ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन काल की जल संरचनाओं के अवशेषों का बाकी रहना यह बताता है कि उस काल के इंजीनियरों ने उचित स्थल का चयन किया था। नदी के सतह का ध्यान, उनके नींव डालने के उचित स्थान का चयन, पानी के दबाव और उसकी धारा को समझना आदि वे काम थे जिनको दृष्टिगत रखने के कारण आज भी ईरान में प्राचीन बांधों और पुलों को देखा जा सकता है। इनमें से कुछ का संबंध सासानी काल से है।
ईरान में प्राचीन काल में जो पुल बनाए गए वे बहुउद्देश्यीय माने जाते हैं और कहीं कहीं पर बांध के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ईरान में पाए जाने वाले प्राचीन पुल बांधों के रूप में भी काम किया करते थे। वे पानी को उच्चतम स्थल तक पहुंचाने में भी सक्षम थे। बाढ़ के दौरान यही पुल किसी सीमा तक जल नियंत्रण के रूप में काम करते थे और कभी जलाशयों के रूप में। इन तकनीकी कारणों के अतिरिक्त ईरान में पुलों के निर्माण में हमेशा ही पुल के कलात्मक एवं सौंदर्यात्मक आयामों को भी दृष्टिगत रखा जाता रहा है। देश में बचे हुए कुछ पुल इस बात की पुष्टि करने में सक्षम है।
पुलबंद या शादुरून ऐसा पुल है जिसे नदी के ऊपर टुकड़ों में बनाया जाता है। इसको तीन प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। प्रमाण इस बात के सूचक हैं कि शाहदुरून पुलों का निर्माण शाहपुर सासानी के काल में किया जाता था। इस प्रकार के पुलों को विश्व का सबसे पुराना पुल बताया जाता है। इस पर गुजरने के अलावा इसकी ऊंची दीवार पानी के एक जगह एकत्रित होने में मदद करती है। इस पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था।
ईरान के प्राचीन पुल वास्तव में बांध वाला काम भी किया करते थे। ये पानी को काफी ऊंची सतह तक पहुंचाते और फिर उसको अपने निकटवर्ती क्षेत्रों तक ले जाते थे। जिस जमाने में बाढ़ आती थी उस जमाने में यह पुल किसी सीमा तक बाढ़ के पानी को रोकते थे और कभी कभी इनको पानी के भंडारण के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। ईरान में पुल के निर्माण के समय उसके तकनीकी आयामों के साथ ही साथ उसे सुंदर बनाए जाने पर भी जोर दिया जाता था। आज जब हम ईरान के प्राचीन पुलों के बचे हुए अवशेषों को देखते हैं तो ये बात सरलता से समझ में आती है। इस पुल की एक विशेषता यह भी थी कि इसके किनारे किनारे पंचकियां बनी होती थी।
निसंदेह खामनेशी काल में जो देश के विस्तार का काल था उस समय विस्तार में सबसे बड़ी रुकावट छोटी बड़ी नदियां थीं। इतिहास की पुस्तकों से पता चलता है कि हखामनशियों को उस काल में लड़ाइयों के समय इन बाधाओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन विशेषज्ञों के प्रयासों और उनके कामों के कारण इस समस्या का समाधान हो गया। ईरान का सबसे प्राचीन धनुषाकार पुल हखामनशी काल में ही बनाया गया था। इस पुल की चौड़ाई 16 मीटर थी। इसमें पत्थर के 5 स्तंभ थे और इसमें लकड़ी का भी काम किया गया था।
एक यूनानी इतिहासक हरुदत के अनुसार, जिसने कोरुश और करजूस की लड़ाई का उल्लेख किया है, हकामनेशी शासन से पहले लघु एशिया में पुल का अस्तित्व ही नहीं था। इस क्षेत्र में पहली बार पुल का निर्माण हकामनेशी काल में शाही मार्ग बनाने के समय किया गया। हरुदत ने कुरुश के साथ मैसा गेटिया के युद्ध के संबंध में आराक्स नदी पर पुल बनाए जाने का ही जिक्र किया है। इस संबंध में वे लिखते हैं कि जब कुरुश ने अपनी सेना को आराक्स नदी तक पहुंचा दिया तो उसने इसी नदी के ऊपर एक पुल बनवाया। इसी के साथ उसने सैनिकों को नावों पर सवार करवाया।
ईरान में पुलों के निर्माण का इतिहास जहां हखामनी काल की ओर जाता है, वहीं सफवी काल को उसका चरम बिंदु बताया गया है। शाहब्बास सफवी के सत्तासीन होने के बाद इस्फहान नगर को ईरान की राजधानी के रूप में चुना गया। बाद में धीरे धीरे इस्फहान की गणना विश्व के खूबसूरत नगरों में होने लगी। सफवी काल में इस्फहान नगर हर प्रकार की वास्तुकला के केंद्र के रूप में पहचाना जाता था। उस काल में कई पुल बनाए गए, जैसे जायन दरूद नामक नदी पर बनाए जाने वाला सियो से पुल और पुले चूबी इत्यादि।
इन्हीं पुलों के बनने से जहां आने जाने में आसानी हुई, वहीं पर यह पुल मनोरंजन स्थल के रूप में भी पहचाने जाने लगे। उस समय यह राजदरबारियों और विदेशी राजदूतों का मनोरंजन स्थल थे। पुल को बनाने और इसे सजाने व सवारने में दक्ष वास्तुकारों की सेवाएं ली गई। इस काम को सफवी शासन के गौरवपूर्ण कार्यों में गिना जाता है। सियो से पुल 295 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। इस पुल में 33 दर बने हुए हैं।
वर्तमान समय में ईरान में अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे पुल मौजूद हैं जो पुराने हैं और उनको विभिन्न कालों में बनाया गया है। ईरान के दक्षिण में स्थित खुजिस्तान प्रांत ऐसा प्रांत है जहां पर पुलों की संख्या अन्य प्रांतों की तुलना में बहुत अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि खुजिस्तान में कई नदियां बहती हैं। यहां पर सिंचाई का प्राचीन व्यवस्था आज भी मौजूद है जो शताब्दियों पुरानी है। इस क्षेत्र में कारून, करखे और जराही नामक नदियां बहती हैं जिन पर कई पुल बने हुए हैं। प्रांत की जनता इससे लाभान्वित होती है।
यदि हम ईरान के सबसे बड़े और भव्य पुल को देखना चाहते हैं तो हमको दक्षिणी ईरान के एक अन्य प्रांत होर्मुज़गान की यात्रा पर जाना होगा। यहाँ पर बंदर अब्बास नगर से 50 किलोमीटर पश्चिम में कुल नदी पर एक बहुत बड़ा पुल बना हुआ है। लातीदान पुल इस्फहान के सियोसे पुल के 3 बराबर है, जो एक विश्व विख्यात पुल है। सियोसे पुल या अल्लाह वेर्दी खान पुल की लंबाई 295 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 14 मीटर है। इस पुल में 33 दर बने हुए हैं। इस पुल को अल्लाह वेर्दी खान ने बनवाया था। शाह अब्बास सफवी के काल में अल्लाह वेर्दी खान ने इस्फहान के मशहूर वास्तुकार उस्ताद हुसैन बन्ना से बनवाया था। यह पुल जायंदेरुत नदी पर बना हुआ है।
कुल नामक नदी क्षेत्र की पानी से भरी हुई एक नदी हुआ करती थी। इसमें मौसम के हिसाब से पानी बढ़ता और घटता रहता था, किंतु इससे गुजरना बहुत कठिन था। यह नदी कारवानों के रास्ते में पड़ती थी। ऐसे में इस नदी के ऊपर एक पुल की बहुत सख्त ज़रूरत थी ताकि कारवान वहां से गुजर सकें। इस पुल के निर्माण में नतराशे हुए पत्थर प्रयोग किए गए हैं, जिनको मसालों से एक दूसरे से जोड़ दिया गया है।
लातीदान पुल ईरान के इतिहास का सबसे लंबा पुल रहा है। सन 1993 में आने वाली भीषण बाढ़ में इस पुल के अवशेष सामने आए थे। पुरातनविदों का कहना है कि यह कम से कम 500 साल पुराना पुल है। इस पुल की लंबाई 1 किलोमीटर है। ईरान के इस प्राचीन पुल में पहले 233 दर थे, किंतु वर्तमान समय में इसमें मात्र 33 दर ही बचे हैं। वर्तमान समय में इस पुल के 200 मीटर के हिस्से का पुनर्निर्माण किया जा चुका है।
लातीदान पुल लंबा होने के कारण ऐसा है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस पुल पर सादे पत्थरों को मसालों से जोड़ा गया है। नदी के तल छटी होने और इसके तल पर बालू की अधिकता के कारण इसकी नींव मजबूत नहीं है। इसकी नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए इसकी सतह पर भी पत्थरों का प्रयोग किया गया है।
तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये प्रसारण आप रेडियो तहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे थे। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।